समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, परिक्रमा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों की भी हम बात करेंगे जिनकी है आज पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। तो इस परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुश्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड मुकेश तो हस्बे दस्तूर पहले बता ही देते हैं कि हमारे प्रोग्राम में होना क्या है, कुछ गुंजाइश छोड़ते नहीं हमारे लिए, बट नंदलेस सिंस द शो इज कॉल्ड परिक्रमा तो हम लोग जो है सबसे अहम चीज है वील डू द परिक्रमा ऑफ द कंट्री एंड गो टू डिफरेंट पार्ट्स एंड सी व्हाट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आर पोरिंग इन फ्रॉम आवर डिफरेंट कॉरेस्पॉन्डेंट्स। अब जाहिर सी बात है ये जो वक्त है ना मुकेश, हल्की हल्की गुलाबी सर्दियां जिसे कहते हैं, तो एवरीवेयर इज द यू नो द सीजन ऑफ फेस्टिवल्स, इवन द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज गोइंग ऑन, सो वी हैव अ वेरी गुड कैप्सूल कमिंग इन फ्रॉम देयर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लॉट्स मोर टू लुक फॉरवर्ड टू, बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस।
भारतीय जनता पार्टी नेता देवेंद्र फडणवीस कल मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।
प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अटेंड्स एनुअल नेवी डे सेलिब्रेशंस एट पुरी इन उड़ीसा।
कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याह्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे।
शिरोमणि अकाली दल लीडर सुखबीर सिंह बादल शॉट एट ड्यूरिंग पेनेंस एट गोल्डन टेंपल इन अमृतसर, एस्केप्स अनहर्ट।
और मस्कट में जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से।
And now it's time for Dateline India. Yes, that segment in which we talk about some topics that are of national importance. And today, of course, we're going to talk about Indian Navy Day. Every year, December 4 is observed as Indian Navy Day. It commemorates the courage, valor, and selfless contribution of Indian Navy to the nation. Among the three security forces of the country, Indian Navy was established in 1612. Since then, the Maritime Force has been showcasing bravery, various humanitarian assistance, disaster relief, anti-piracy missions and other security operations have been carried out by the Indian Navy.
जी हां, भारतीय नौसेना दिवस मनाने की शुरुआत मई 1972 में हुए एक वरिष्ठ नौसेना अधिकारी सम्मेलन में हुई थी। इस सम्मेलन में 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को भारतीय हवाई अड्डे पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी सेना के आक्रमण का जवाब देते हुए भारतीय नौसेना ने 4 और 5 दिसंबर की रात हमले की योजना बनाई और ऑपरेशन ट्राइडेंट को अंजाम दिया। इस दौरान सेना ने पाकिस्तानी नौसेना को भारी नुकसान पहुंचाया। इस मिशन में भारतीय नौसेना का नेतृत्व कमोडोर कासरगोड पट्टन शेट्टी गोपाल राव ने किया। सेना की उपलब्धियों को देखते हुए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया।
The celebration of Indian Navy Day honors officers who safeguard the nation's coastal defense. The day also honors the bravery of those who serve in the Navy, braving hardships while defending the nation's maritime security. Apart from maintaining peace along the Indian Ocean, the Indian Navy is entrusted with ensuring safe passage of global trade through the seas, besides promoting international maritime cooperation. Or Mukesh, ek alag hi duniya hoti hai, isn't it,
the
Navy
bilkul,
officers ki, that we can't even imagine what a day is like in a, you know, in the life of a person who is on duty in the seas, kyunki charon taraf sirf samandar hai.
Pani, pani.
एंड समंदर पे भी जो है इंसान ने जो है कह सकते हैं सरहदें बनी हुई हैं, तो जब सरहद हैं तो जाहिर है आपको उनकी जो है हिफाजत तो करना ही है, बट इट्स अ वेरी वेरी टफ जॉब एंड सुनने में आसान लगता होगा बट इट्स अ वेरी टफ जॉब क्योंकि इतनी ज्यादा सी सिकनेस भी हो जाती है दैट यू नो अ स्पेशल ट्रेनिंग इज नीडेड फॉर दैट, सो अ वेरी वेरी बिग सल्यूट टू ऑल द नेवल सर्विस ऑफिसर्स।
बिल्कुल, भारतीय नौसेना की शुरुआत 1612 में हुई थी और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉयल इंडियन नेवी के नाम से नौसेना का गठन किया था। व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नौसैनिक दल का गठन किया था और स्वतंत्रता के बाद 1950 में इसे भारतीय नौसेना के रूप में पुनर्गठित किया गया। और भारतीय नौसेना दिवस न केवल भारतीय नौसेना की उपलब्धियों को सम्मानित करता है बल्कि देशवासियों को अपनी सेना के प्रति गर्व महसूस करने का भी अवसर प्रदान करता है। यह दिन हमें समुद्री सुरक्षा की आवश्यकता और नौसेना की भूमिका को समझने का अवसर प्रदान करता है।
Yes, and since you pointed out that the beginning was there in the year 1612, we all know that East India Company was established in the year 1600. तो जाहिर सी बात है उस वक्त जो purpose mainly था वो अपने ही उनका जो trade था उसकी हिफाजत करना था. But nonetheless, एक ढांचा हम लोग को मिला after our independence, and we took on the role of the Indian Navy, as you can say. And let's not forget the contribution of Indian women, Mukesh, because until 1992, women were inducted into the armed forces only through medical services. मतलब वो nurses हो सकती थी, doctors हो सकती थी, paramedics हो सकती थी, but they could not be in action. However, in July 1992, the Indian Navy began inducting women as short service commissioned officers in select non-medical branches. And since then, Indian women have made remarkable strides in the Navy. And therefore, among the many first and examples that were set for Indian women, especially the younger generation, Indian Navy Day is an opportunity to celebrate their achievements as well.
और परिक्रमा कार्यक्रम में वक्त हुआ है अपने संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। तो इस क्रम में सायरा सबसे पहले नागालैंड चलें क्योंकि वहां पर इन दिनों 25वां हॉर्नबिल महोत्सव चालू है।
यस एब्सोल्युटली, एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द शो दैट द मच सॉट आफ्टर हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटिंग द 25th ईयर दिस ईयर एंड इट्स द वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कल्चरल इवेंट्स इन नागालैंड एंड ऑफ कोर्स इट शोकेसेस the state's rich cultural heritage at the global level. Organized by Nagaland's Tourism and Art and Culture Department, the Hornbill Festival displays the northeastern state's deep-rooted traditions and its rich cultural heritage in all its ethnicity, diversity, and grandeur. The festival is also a tribute to the great hornbill, a bird revered by the Naga people for its alertness and grandeur. And iski zyada details jaante hain apne correspondent se from Asuno.
The 10-day long 25th edition of Hornbill Festival began at the picturesque Naga Heritage Village Kisama on December 1 evening. With the beating of traditional gongs, the annual Hornbill Festival, named after the colorful forest bird, commenced, coinciding with the 62nd Nagaland Statehood Day celebration. The 25th edition of the festival is showcasing a collaborative cultural experience with Japan, the USA, the United Kingdom, Wales, and Peru as country partners, while Sikkim and Telangana as the partner states. Nagaland Governor Laga Nassand and Chief Minister Nipu Ryo are the chief hosts and hosts of the festival, respectively.
As we complete 25 years of this festival, it is a moment of reflect on what we have achieved. It is also a moment to celebrate our unity in diversity.
On behalf of the state government and the people of Nagaland, it is my honor to welcome to the land of festival.
Besides the ambassadors and representatives of the four country partners and state partners, Padma Bhushan, Grammy and Oscar-winning composer Dr. A.R. Rahman also attended the inaugural functions of the festival.
Hosted by Honorable Governor, usually, you know, when I start to sing, I rehearse and do all the stuff. So for you and for him, for the Chief Minister, will you sing with me too?
Honorable
Gar aaja Nagaland's culture, tradition and heritage are on full display in the many stalls spread across the festival venue. Highlights of the festival include daily cultural extravaganza of the tribes of Nagaland, Hornbill Music Festival, Mikey Fest hosted entirely by the women folk of Nagaland, village walk, heritage walk, murungs, crafts, artist corners and many more. This 10-day festival is a convergence of all 18 tribes of Nagaland, offering visitors an immersive experience into the tribal life, local food, traditional games, music and dance, along with the finest handicrafts and textiles and many more. For Parikrama, this is Asunyo Kohima.
और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद रातापानी मध्य प्रदेश का आठवां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे राज्य के लिए बड़ा उपहार बताया है, तो सुनते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश को हमेशा प्राथमिकता दी है।
प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने आठवां हमारा टाइगर अभयारण्य बना है और तुरंत बाद एक और बनने वाला है। एक तरह से ये देश के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर हमारे यहाँ है, तो टाइगर पार्क भी हमारे यहाँ है।
रातापानी टाइगर रिजर्व में लगभग 90 से ज्यादा बाघ और अन्य वन्य जीव है। रातापानी के टाइगर रिजर्व घोषित होने से इस क्षेत्र में न केवल पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा आवंटित बजट से वन्य प्राणियों का और बेहतर ढंग से प्रबंधन किया जा सकेगा। संजीव शर्मा, भोपाल।
एंड बिफोर वी गो ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉरेस्पॉन्डेंट, कुछ किताबों की बात अगर की जाए मुकेश, तो कहते हैं ना कि दैट बुक इज द बेस्ट फ्रेंड।
बिल्कुल।
और गुलजार ने भी बड़े अच्छे से एक नज्म लिखी है, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। और कई बार, लेकिन आजकल यू नो द ट्रेविस्टी ऑफ दीज टाइम्स वेयर वी आर फ्लडेड विद स्क्रीन्स एंड सोशल मीडिया, के किताबें सच में बंद अलमारियों में ही पीछे रह गई हैं। बट इन ऑर्डर टू इनकल्केट अ रीडिंग हैबिट स्पेशली among the younger generation, a non-profit organization called Food for Thought is setting up libraries and giving books to the students of schools in border areas of the country. So, matlab jab winter vacations hoenge tab unko bahut sari books di jayengi so that they can read it during their holidays. So I think that's a very very good move over there, and there are more details from our correspondent. Let's listen more.
Prime Minister Narendra Modi has mentioned in his recent Mann Ki Baat on Akashwani about Food for Thought, a foundation which is helping students to make reading non-academic books a regular habit by setting up libraries at their schools and operating them regularly. Over 1 lakh children across the country are accessing over 1.5 lakh books every day. The geotagged books are spreading the wings of the young minds and expanding their horizons as books of their choice of subject are made available to them. Founder of Food for Thought, K. Srinivas Rao, informed that their foundation has identified 150 schools close to the international borders for setting up libraries to enable the children to access books even when their schools are closed for any reason.
So as Food for Thought Foundation, we have always strived and ensured that we don't keep, you know, there are idle minds, and idle minds need to be kept busy. And one of the best ways to keep them busy is to give books. Now when we look at these border schools, which are across the border of China and Pakistan, many times the school gets shut because of the extreme climate of winters. Himalayas alone, these schools are there. So they get shut for 2-3 months, or whenever there is shelling or tension, the schools get shut. And often we get feedback from the teachers saying if there were books, then we could give those books to these children and keep them occupied and engage them along the books. So the target for 2025 is ki we've got around 150 schools identified.
He says the pilot project that the Food for Thought has taken up in Meghalaya to help community to read books has given encouraging results, and the same will be replicated in other parts of the country. Interestingly, all the books are geotagged so that the organizers can know whereabouts of the books. They found that the students in remote and hilly areas are coming forward to access books than their urban counterparts. Lakshmi for Parikrama, Hyderabad.
और देश की वित्तीय राजधानी मुंबई की पहचान से जुड़ा गेटवे ऑफ इंडिया आज 100 साल का हो गया है। भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ और अंत का प्रतीक गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई की सबसे प्रमुख और ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारे मुंबई संवाददाता के पास।
मुंबई का नाम लेते ही हर किसी के मन में अलग अलग तस्वीरें उभरती है, लेकिन उन सभी तस्वीरों में एक चीज होती है, गेटवे ऑफ इंडिया। ब्रिटेन के सम्राट पंचम जॉर्ज और उनकी पत्नी रानी मेरी की भारत यात्रा के स्मरणार्थ बनवाया गया ये विजय द्वार देखने में भले ही बहुत प्राचीन लगे, लेकिन इसका उद्घाटन आज से सिर्फ 100 साल पहले 4 दिसंबर 1924 को हुआ था। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जैसी महान हस्तियों से भी ये जगह जुड़ी हुई है। इस ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया के इतिहास, निर्माण और वास्तुकला के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं मुंबई के इतिहास के अभ्यासक भरत गोठोसकर, जिनकी कहानी शुरू होती है सम्राट पंचम जॉर्ज और रानी मेरी के भारत आगमन से।
किंग जॉर्ज द फिफ्थ और क्वीन मेरी 1911 में मुंबई में आए, क्योंकि उनको दिल्ली जाना था, दिल्ली दरबार था। तो मुंबई में लैंड हुए तब गेटवे ऑफ इंडिया वहां नहीं था, ये बाद में बना और एक टेम्पररी प्लास्टर ऑफ पेरिस कार्डबोर्ड का बना हुआ एक ताजमहल जैसे दिखने वाला एंट्रेंस बनाया गया था, जिसमें से वो आए। गेटवे ऑफ इंडिया बाद में आया, यानी ये जो इवेंट था उसके स्मरणार्थ बांधा गया। जो स्टाइल इस्तेमाल किया आर्किटेक्चर की, वो जॉर्ज विटेट करके एक आर्किटेक्ट थे, बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्ट थे, मुंबई में कहीं बड़ी बड़ी इमारतें उन्होंने बनाई हैं। तो गेट के लिए उन्होंने अलग अलग जगह पर जाके भारतीय शैली का अध्ययन किया और उनको खुद को जो सबसे पसंद आई वो गुजरात सल्तनत की शैली थी। तो अगर आप गौर से देखेंगे गेटवे ऑफ इंडिया को, तो उस पर मीनार है, उसके ऊपर जो जालियां हैं, उसके ऊपर जो आर्चेज है, उसके ऊपर जो कार्विंग्स है, ये सब क्लियरली गुजरात सल्तनत स्टाइल की छाप उसके ऊपर है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी थी, तो तब के जमाने में आरसीसी का इस्तेमाल हुआ है इसमें, आरसीसी रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, और उसके ऊपर स्टोन क्लैडिंग ऐसा किया गया है। तो आपको लगता है कि अब इमारत बहुत पुरानी, गेटवे ऑफ इंडिया ये सेरेमोनियल एंट्रेंस है। जब भी कोई बोट से आएगा प्रतिष्ठित आदमी, तो वो यहीं से ही भारत में उसकी एंट्री होगी।
भारत की स्वतंत्रता के बाद भी गेटवे ऑफ इंडिया कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह बना, कभी आतंकवादियों के निशाने पर आया और दूसरी ओर त्योहारों और उत्सवों का स्थान बनकर भी उभरा। पिछले 100 वर्षों में कई उतार चढ़ाव देखने वाला गेटवे ऑफ इंडिया आगे भी हर कदम पर मुंबई की पहचान को बुलंद करता रहेगा। परिक्रमा के लिए मुंबई से अंकित आपटे।
And yes, we started today's Parikrama's journey with the Northeast, and we are ending the journey of Parikrama also in one of the Northeastern states. Yes, in Arunachal Pradesh, a young male small Indian civet was rescued from Papu Hill in Papum Pare district. It has been successfully translocated to release site for acclimatization in the Pake Tiger Reserve in the Pake Kasang district. Estimated to be about 2 months old at the time of rescue, the civet has been undergoing rehabilitation at the Center for Bear Rehabilitation in the Tiger Reserve. We have more details from our correspondent.
Small Indian civet is a nocturnal small carnivore of the family Viverridae. They are highly adaptable and can live in a wide range of conditions, including close to humans. The small Indian civet is native to South and Southeast Asia and found in various habitats. This species is listed under India's Wildlife Protection Act 1972 and faces threats like habitat loss, hunting forest musk, pelt, meat and illegal pet trade. Manager and head of the Center for Bear Rehabilitation, Dr. Pajit Basmatari, has informed that the rescued civet was initially housed at the Itanagar Biological Park before being transferred to the center in June this year. Upon arrival, the animal was severely stressed and in poor health condition. He said that following intense care and treatment, it has shown significant improvement, displaying a healthy appetite and normal eating habits. He said the civet is growing well and has been relocated to the release site for acclimatization.
तो अभी जो हम लोग स्मॉल इंडियन सिवेट इसको हम लोग रेस्क्यू किया था, ही वाज इन सीवियर स्ट्रेस। तो वो स्ट्रेस के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, हम लोग जितना सके हम लोग सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया हुआ है। उसके बाद केयर, जितना केयर करना है 24/7 केयर, उसको हम लोग केयर किया है।
सत्य प्रकाश सिंह, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, पाके टाइगर रिजर्व, हैज लॉडेड द एफर्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द सीबीआरसी टीम फॉर प्रोवाइडिंग द नेसेसरी केयर टू द सिवेट। He said that shifting the animal to the core of Pake Tiger Reserve is a crucial step towards its eventual release and reintegration into the wild ecosystem. For Parikrama, this is Rakesh Tole, Akashvani News, Itanagar.
और सायरा आप जल्दी से बता दें कि व्यापार जगत में क्या हलचल चल रही
है। यस, डोमेस्टिक बेंचमार्क इक्विटी इंडिसेस टुडे मेंटेन द पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी सपोर्टेड बाय गेन्स इन रियल्टी एंड बैंकिंग स्टॉक्स। द 30 शेयर बीएसई सेंसेक्स एडेड 110 पॉइंट्स टू क्लोज एट 80,956 एंड द एनएसई निफ्टी 50 एंडेड नियरली फ्लैट मार्जिनली अप बाय 10 पॉइंट्स टू सेटल एट 24,467।
और खेल जगत की हलचल लेकर स्टूडियो पहुंच चुके हैं धर्मेंद्र। धर्मेंद्र बताएं कहां से शुरू कर रहे हैं।
शारजाह में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के ग्रुप ए में आज भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को 10 विकेट से हरा दिया। संयुक्त अरब अमीरात की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 44 ओवर में 137 रन बनाकर आउट हो गई। भारत के लिए युद्धजीत गुहा ने 3 जबकि चेतन शर्मा और हार्दिक राज ने 2-2 विकेट लिए और भारत ने 16 ओवर और 1 गेंद में बिना किसी नुकसान के 143 रन बनाकर मैच जीत लिया। इस जीत से भारत ग्रुप ए में 4 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा और उसने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पाकिस्तान इस ग्रुप में पहले स्थान पर रहा। आज उसने जापान को 180 रन से हराया। ओमान के मस्कट में जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल मैच भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। टूर्नामेंट में वर्तमान चैंपियन भारत एक भी मुकाबला नहीं आ रहा है। और उधर सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश का सामना चीन के मौजूदा चैंपियन डीन लिरेन से चल रहा है।
धन्यवाद धर्मेंद्र।
एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आजादी का सफर।
आज की इस कड़ी में हम याद कर रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के रॉबिनहुड कहे जाने वाले टंट्या भील को। ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करते हुए वे 4 दिसंबर 1889 को शहीद हो गए थे। टंट्या भील ने 12 साल तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया। अदम्य साहसी टंट्या भील में विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का जुनून था।
टंट्या भील का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के बडाडा गांव में हुआ था। वे अंग्रेजों को सबक सिखाना चाहते थे और समतावादी समाज का सपना साकार करना चाहते थे। भारत को अंग्रेजों की अधीनता से मुक्त कराने के जोश और जुनून भरे अपने कारनामों के कारण वे बार बार पकड़े गए और कई बार जेल तोड़कर भाग भी निकले।
वे एक कुशल निशानेबाज और गुरिल्ला योद्धा थे। दावा या फलिया उनका मुख्य हथियार था और बाद में उन्होंने बंदूक चलाना भी सीख लिया था।
अपनी युवावस्था से जीवन भर घने जंगलों घाटियों और पहाड़ों में रहने वाले टंट्या ने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की पुलिस और होलकर राज्य की सेनाओं से लोहा लिया। टंट्या ने कई बार पुलिस को चकमा दिया।
टंट्या ब्रिटिश सरकार के खजाने और उनके समर्थकों की संपत्ति को लूटकर गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देते थे। वे लोगों में मामा के नाम से लोकप्रिय थे।
इंदौर की सेना के एक अधिकारी ने टंट्या को क्षमा का वादा किया, लेकिन धोखे से उन्हें जबलपुर ले जाया गया। वहां उन पर मुकदमा चलाया गया और 4 दिसंबर 1889 को फांसी दे दी गई। हम इस देशभक्त को नमन करते हैं।
आज ही जन्म हुआ था स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय गणराज्य के 8वें राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरामन का। वे एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और अहिंसा के गांधीवादी सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले वेंकटरामन मूल रूप से मानवतावादी थे।
वेंकटरामन का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी में तंजौर जिले के पास पट्टुकोट्टई के राजा मदम गाँव में हुआ था। उन्होंने लॉ कॉलेज मद्रास से कानून में योग्यता प्राप्त की।
वेंकट रामन को 1935 में मद्रास उच्च न्यायालय में नामांकित किया गया था। कानून की प्रैक्टिस करते हुए वेंकट रामन ब्रिटेन के औपनिवेशिक अधीनता से भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसके लिए उन्हें 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया।
।1946 में जब ब्रिटिश शासन से भारतीय हाथों में सत्ता का हस्तांतरण नजदीक था, भारत सरकार ने वेंकट रामन को जापान के सहयोग के अपराध में भारतीय सैनिकों की पैरवी के लिए मलाया और सिंगापुर भेजे जाने वाले वकीलों के पैनल में शामिल किया। बाद में वे संविधान सभा के लिए भी चुने गए।
वेंकट रामन 4 बार लोकसभा के लिए चुने गए और उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री के रूप में काम किया। 1984 में वे भारत के 7वें उपराष्ट्रपति बने। 1987 में वे भारत के 8वें राष्ट्रपति बने और 1992 तक इस पद पर रहे।
Rest in no small measure upon a strong and vibrant democratic institution. These in turn are closely linked with certain sound and lasting values in our public life. My government will fight those trends which have in recent years sapped our democratic institutions of their vitality and strength.
27 January 2009 को उनका निधन हो गया। रामास्वामी वेंकटरामन आजीवन लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहे। महान राष्ट्रवादी रामास्वामी वेंकटरामन को हमारा नमन।
आज हम शहीद फिरंगोजी शिंदे को भी याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 4 दिसंबर 1857 को हुई थी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के गिरगांव में बाजी शिंदे के यहाँ जन्मे फिरंगोजी एक किसान थे। उन्होंने दिसंबर 1857 में कोल्हापुर के महाराजा चीमा साहेब की गिरफ्तारी के बाद कोल्हापुर महल में ब्रिटिश सेना के शिविर पर हमले में भाग लिया था। वे 4 दिसंबर 1857 को लड़ाई में शहीद हो गए। आकाशवाणी इस शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करता है।
और अब याद कर लेते हैं उन महान व्यक्तियों को जिनकी आज पुण्यतिथि। इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक शशि कपूर को।
यस, बॉर्न एज बलबीर राज कपूर, शशि कपूर वॉज नॉट जस्ट एन एक्टर बट ऑल्सो प्रोड्यूसर हु इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क्स इन हिंदी फिल्म्स। बट अपार्ट फ्रॉम हिंदी फिल्म्स, मुकेश उनकी बहुत सारी लाजवाब फिल्म्स दैट वर प्रोड्यूस बाय द मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शंस लाइक मुहाफिज, हाउस होल्डर, शेक्सपियर वाला, हीट एंड डस्ट। आई थिंक दे आर क्वाइट कमेंडेबल एंड स्पीक वॉल्यूम्स ऑफ हिज प्रोवेस एज एन एक्टर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल नो दैट ही वॉज रेसिपियंट ऑफ 4 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 2 Filmfare Awards, and Government of India also honored him with the Padma Bhushan in the year 2011 and Dada Saheb Phalke Award in the year 2014.
बिल्कुल, तो क्यों ना उनके एक डायलॉग सुन लिया जाए पहले।
आज एक हर्फ को फिर ढूंढता फिरता है ख्याल, मद भरा हर्फ कोई, जहर भरा हर्फ कोई, दिल नशी हर्फ कोई, कहर भरा हर्फ कोई। आज एक हर्फ को फिर ढूंढता फिरता है ख्याल, हर्फे उल्फत कोई दिलदार नजर हो जैसे, जिससे मिलती है नजर बोसाए लब की सूरत, इतना रोशन कि सरे मौजाए जर हो जैसे, सोबते यार में आगाज़े तरब की सूरत, हर्फ नफरत कोई शमशीर गजब हो जैसे। आज एक हर्फ को फिर ढूंढता फिरता है ख्याल।
और आज हम एक और सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता को याद कर रहे हैं। जी हां, मोतीलाल को, मोतीलाल की आज जयंती है। मोतीलाल ने अपने जादू से नायक और चरित्र अभिनेता के रूप में 2 दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। उन्होंने हिंदी फिल्मों को मोलोड्रामाई संवाद अदायगी और अदाकारी की तंग गलियों से निकलकर खुले मैदान की ताजी हवा में खड़ा किया था।
Yes, who was the winner of the Filmfare Best Supporting Actor Award for Devdas. He is credited with being among Hindi cinema's first natural actors. He also directed the film Choti Choti Baatein but died before its release. And at the 13th National Film Awards, it won the award for Certificate of Merit for the 3rd Best Feature Film, and he posthumously won the Certificate of Merit for the Best Story Writer.
बिलियर्ड तो खेलते हैं?
यहाँ खेल तो लेता हूँ लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता।
क्यों?
इस खेल में जोश नहीं है, रफ्तार नहीं है, मुझे नींद सी आने लगती है।
अच्छा, तो आपको हर एक चीज में जोश और रफ्तार चाहिए।
जी, रफ्तार ही जिंदगी है।
तो इसीलिए आप जिंदगी को तूफान की तरह से भगाए लिए चला जाना चाहते हैं। मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपके बारे में क्या जानता हूँ। एक जमाने में मैं भी जिंदगी को दोनों हाथों से।
और मोतीलाल की अदाकारी के अनेक पहलू हैं। कॉमेडी रोल से वे दर्शकों को गुदगुदाते थे तो दोस्त और गजरे जैसी फिल्मों में अपने संजीदा अदाकारी से लोगों की आंखों में आंसू भी भर देते थे।
Yes, and if he talked about his career in his characteristic humor, he said, married 100 times, died almost twice, never born but always brought down by a parachute.
तो श्रोताओं जी हाँ बिल्कुल, अब समय जी समय हमसे अनुमति मांग रहा है कि हम अब इजाजत लें अपने श्रोताओं से। तो मुकेश कुमार और सायरा मुश्तबा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।